विवाह और पारिवारिक जीवन। वैदिक युग के आर्य विवाह को एक धार्मिक कृत्य मानते थे। मानव जीवन को जिन चार आश्रमों में उन्होंने विभक्त किया था, उनमें गृहस्थाश्रम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक युग के साहित्य में गृहस्थ के महत्व को प्रकट करते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार छोटी और बड़ी सब नदियां समुद्र में जाकर आश्रय ग्रहण करती है, वैसे ही सब आश्रमों के मनुष्य गृहस्थ से ही आश्रय प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे माता द्वारा रक्षा किए जाने पर ही रक्षित होता है, वैसे ही सब भिक्षुक सन्यासी गृहस्थियों के दान से ही निर्वाह करते हैं। गौतम धर्म सूत्र तथा बौधायन धर्म सूत्र में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि वास्तव में गृहस्थाश्रम ही एक आश्रम है। ब्रह्मचर्या आश्रम में गृहस्थ की तैयारी की जाती है और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की मान्यता शास्त्रों को अभिमत नहीं है। गृहस्थ जीवन विवाह पर ही निर्भर था, अतः विधिवत विवाह संस्कार करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना प्रत्येक नर नारी का धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण ने यह प्रतिपादित किया है कि जाया अर्थात स्त्री पुरुष की अर्ध अर्थात आधी होती है। जब तक पुरुष जाया को प्राप्त न कर ले, वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। जाया को प्राप्त करके ही पुरुष संतान उत्पन्न करता है और अर्ध न रहकर सर्व बनता है। तैत्रीय ब्राह्मण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तीन ऋण लेकर उत्पन्न होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण से उत्कीर्ण होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य विवाह करके संतान उत्पन्न करे। तैत्रीय ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि अपत्निक पत्नी से रहित पुरुष अयज्ञीय जिसे यज्ञ करने का अधिकार न हो होता है। यज्ञ सदृश धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पत्नी का अत्यधिक महत्व होने के कारण ही उसे सहधर्मिणी एवं अर्धांगनी कहा जाता था। क्योंकि विवाह एक धार्मिक कृत्य था, अतः पति और पत्नी के संबंध को भी शाश्वत माना जाता था और वैदिक युग के आर्यों की दृष्टि में यह वांछनीय नहीं था कि तलाक आदि द्वारा विवाह संबंध का विच्छेद हो सके। ऋग्वेद में विवाह के अनेक प्रयोजन बताए गए हैं। इनमें एक प्रयोजन वीर एवं सुयोग संतान की प्राप्ति तथा संतान द्वारा अमरत्व को प्राप्त करना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में पत्नी द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि मेरे पुत्र शत्रुओं को नाश करने वाले हों और मेरी पुत्री तेजस्विनी हो। एक अन्य मंत्र में यह प्रार्थना है कि पत्नी 10 पुत्रों को जन्म दे। वैदिक आर्य यह समझते थे कि संतान तंतु को न टूटने देने से मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि संतान अपना ही रूप होती है। विवाह का एक अन्य प्रयोजन धर्म का पालन समझा जाता था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि यागिक अनुष्ठान पत्नी के बिना पूर्ण नहीं किए जा सकते थे, रति या इंद्रिय सुख विवाह का एक अन्य प्रयोजन था। उपनिषदों में इंद्रिय सुख की तुलना ब्रह्मनाद के साथ की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि जैसे किसी पुरुष को अपनी पत्नी से मिलते हुए न बाह्य जगत का ध्यान रहता है और न अभ्यंतर जगत का, वैसे ही पुरुष को प्राज्ञ आत्मा से जुड़ जाने पर बाहर और अंदर की किसी भी वस्तु का कोई ध्यान नहीं रह जाता। मनुस्मृति में इन तीन के अतिरिक्त विवाह का एक चौथा प्रयोजन भी बताया गया है, वह है स्वर्ग। अपने लिए तथा पितरों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति। मनु के अनुसार ये सब बातें संतान धर्म कार्य रति और स्वर्ग की प्राप्ति दाराधीन अर्थात पत्नी के अधीन है। अतः सब कोई को विवाह बंधन में बंध कर इनकी प्राप्ति करनी चाहिए। विवाह का एक प्रयोजन स्वर्ग भी है। प्राचीन भारतीय विचारक यह मानते थे कि धर्म अर्थ और काम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सोपान रूप में है। विवाह द्वारा जब मनुष्य गृहस्थ होकर धर्म का पालन, धर्मानुकूल अर्थ संपत्ति का उपार्जन तथा धर्मानुमत ढंग से काम का सेवन करता है और इस प्रकार अपना सांसारिक अभ्युदय कर लेता है, तभी वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों का जीवन बिताए बिना मनुष्य का वह विकास नहीं हो सकता जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति के योग बना जाता है। इसी दृष्टि से सबके लिए गृहस्थ होकर पारिवारिक जीवन बिताना आवश्यक माना जाता था। प्राचीन साहित्य में अनेक ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें कि कतिपय व्यक्तियों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, पर अंत में उन्होंने अपनी भूल अनुभव की और विवाह करके वे पितृऋण से उऋण हुए। महाभारत में कथा आती है कि जरूतकारु ने यह निश्चय किया था कि वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहेगा, पर जब उसने अपने पितरों की दुर्दशा देखी तो उसने अपने प्रण को तोड़ दिया और पितरों की सदगति के लिए नागराज वासुकी की बहन से विवाह कर पितृऋण से छुटकारा प्राप्त किया। इस प्रकार रुचि विवाह को दुखों और पापों का कारण मानता था और उसने देर तक विवाह नहीं किया था। वृद्धावस्था में उसने अपनी भूल अनुभव की और मालिनी नामक कुमारी के साथ विवाह कर अपनी भूल का सुधार किया। विवाह द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर वैदिक युग के स्त्री पुरुष किस प्रकार का पारिवारिक जीवन बिताते थे, इसका अत्यंत सुंदर एवं स्पष्ट चित्र ऋग्वेद के एक सूक्त में प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार विवाह के पश्चात वरवधु का यह आशीर्वाद दिया जाता था, तुम यहाँ इसी घर में रहो, कभी वियुक्त न हो, अपने इस घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ खेलते हुए और मोद मनाते हुए पूरी आयु तक निवास करो। पत्नी को संबोधन कर एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि यह अधीर चक्षु जिसकी दृष्टि में कठोरता न हो, अपत्ति धनी अर्थात जो पति को किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचाए, शिवा अर्थात मंगलकारिणी, सुमना शुभ संकल्प वाली, सुवर्चा वीरसु अर्थात वीर संतान को जन्म देने वाली, और यह सब द्विपदों मनुष्यों और चतुष्पदों चौपायों के लिए कल्याणकारी हो। पत्नी का अपने परिवार में क्या स्थान होता था, इसका आभास वेद के इस कथन से मिलता है कि स्त्री अपनी सास ससुर ननद आदि पारिवारिक जनों पर साम्राज्ञी के समान शासन करे। परिवार में पति पत्नी की स्थिति एक समान मानी जाती थी। यह अथर्व वेद के इस मंत्र से सूचित होता है, मैं ज्ञानी हूँ तू भी वैसी ही ज्ञानी है, मैं साम हूँ तो तू ऋक है, मैं ध्यो हूँ तो तू पृथ्वी है, मैं देव हूँ तो तू पृथ्वी है, ऐसे हम दोनों यहाँ साथ मिलकर रहें और संतान उत्पन्न करें। अथर्व वेद में पारिवारिक जीवन का आदर्श निरूपित किया गया है, वह बड़े महत्व का है। वहाँ पति पत्नी से यह कहा गया है कि तुम्हें एक सदृश हृदय वाला, एक सदृश मन वाला और द्वेष से विरहित बनाता हूँ। जिस प्रकार गौ अपने पैदा हुए बछड़े को प्यार करती है, वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो। परिवार में पुत्र पिता का अनुवत, पिता के व्रतों के अनुरूप व्रत वाला और माता का समना बने। पत्नी पति के प्रति सदा मीठी और शांतिमय वाणी का प्रयोग करे। भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन के प्रति द्वेष भाव न रखे। सब कोई एक सदृश व्रत का अनुसरण करते हुए परस्पर मीठी वाणी का प्रयोग किया करे। जिस प्रकार देव लोग साथ रहते हुए एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, जिस ज्ञान से ये परस्पर मिल कर रहते हैं, उसी ज्ञान को मैं तुम्हारे परिवार के लिए प्रदान करता हूँ। तुम्हारी प्रपा अर्थात पानी पीने का स्थान एक हो, तुम्हारा अन्न भाग अर्थात भोजन सामग्री आदि संपत्ति एक हो, मैं तुमको एक जुए में जोड़ता हूँ। जिस प्रकार अरे रथ के पहिए की नाभि के चारों ओर जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार तुम एक साथ जुड़कर गति करते हुए अग्नि की पूजा करो, यागिक कर्म आदि का संपादन करो। परिवार में पति और पत्नी की समान स्थिति होने के कारण स्त्री धार्मिक कर्म कांड में हाथ बटाती थी और पति के साथ वह स्वतंत्र रूप से भी उसे यज्ञ अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। वैदिक युग में विवाह संस्था का क्या स्वरूप था, इस विषय में भी कतिपय संकेत वेदों में विद्यमान है। पति का वरण करने में स्त्री की सम्मति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो स्त्री स्वयं ही अपने मित्र अर्थात पति का चुनाव करती है वही भद्रा वधु होती है। विधवा विवाह भी उस युग में प्रचलित था। एक मंत्र में कहा गया है कि मृत पति से दूर ले जाई गई जीवित स्त्री को परिणीति विवाहित होता हुआ मैंने देखा है। जो स्त्री पहले अंधतम अर्थात प्रगाढ़ अंधकार से आच्छादित थी उसे मैं प्रगतिशील दशा में ले आया हूँ। इस मंत्र में विधवा विवाह का स्पष्ट संकेत है। विवाह संबंध निर्धारित करते हुए यह ध्यान में रखा जाता था कि वर और वधु सदृश हों अर्थात गुण कर्म और स्वभाव उनमें एक समान हो। जिन दृष्टियों से वर वधु में सादृश्य की अपेक्षा की जाती थी वे निम्नलिखित थे: कुल की सदृश्यता, शील स्वभाव की सदृश्यता, शरीर एवं रूप की सदृश्यता, आयु की अनुकूलता, विद्या की सदृश्यता, धन अर्थात आर्थिक स्थिति की समानता और दोनों का सनाथ जिनके माता पिता जीवित होना। प्राचीन भारतीय विवाह संबंध को तय करते हुए कुल को बहुत महत्व देते थे। आश्वलायन गृह सूत्र में लिखा है कि सबसे पूर्व माता और पिता दोनों कुलों की परीक्षा कर ली जाए। यदि वर और वधु दोनों के पितृकुल और मातृकुल उत्कृष्ट हों तभी विवाह तय किया जाए। मनु का भी यही मत था। उसके अनुसार उत्तम कुल के वर का उत्तम कुल की वधु के साथ विवाह होना चाहिए, अधम कुल में नहीं। उत्तम कुल का क्या अभिप्राय है, इसे याज्ञवल्क्य स्मृति तथा उस पर लिखे गए विज्ञानेश्वर के भाष्य में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि मातृपक्ष की 10 पीढ़ी से और पितृपक्ष की 5 पीढ़ियों से श्रोत्रियों का जो कुल विख्यात हो वही महाकुल या उत्तम कुल कहता है। कुल परिवार या वंश के गुण दोष संतान में भी आते हैं। इस तथ्य को दृष्टि में रखने के कारण ही विवाह संबंध के लिए कुल को भी महत्व दिया जाता था। पर कुल के साथ साथ वर और वधु के व्यक्तिगत गुणों व स्वभाव आदि को दृष्टि में रखना भी आवश्यक था। वर के लिए अखंड ब्रह्मचर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण था। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार ऐसे युवक को ही विवाह करना चाहिए जो अविलुप्त ब्रह्मचर्य हो और वह ऐसी वधु से ही विवाह करे जो युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी हो। अपस्तंभ गृह सूत्र में यह व्यवस्था की गई है कि विवाह संबंध निर्धारित करते समय यह भली भांति परीक्षा ले ली जाए कि वर पुंसत्व गुण से संपन्न है या नहीं और वह युवा धीमान और जनप्रिय है या नहीं। मनु ने भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए उनका अविलुप्त ब्रह्मचर्य होना आवश्यक माना है। साथ ही उनके लिए यह भी आवश्यक है कि उन्होंने कम से कम एक वेद का अध्ययन पूर्ण कर लिया हो। कैसे पुरुषों के साथ विवाह संबंध नहीं करना चाहिए इसका भी शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है। नारद स्मृति के अनुसार लोक विद्विष्ट अर्थात जो जनप्रिय न होकर जनता द्वारा अधिकृत हो, संबंधियों तथा मित्रों द्वारा परित्यक्त, क्षय रोग से ग्रस्त, उदरी बढ़ी तूंद वाला, प्रमत्त, पतित, कुष्ठी, कुष्ठ रोग से पीड़ित, सगोत्र, अंध, बधिर, नपुंसक, विजातीय तथा प्रव्रजित व्यक्ति विवाह के योग नहीं होते। वर के समान वधु के लिए भी कतिपय गुण आवश्यक माने जाते थे। वधु को बंध्या न होकर संतान उत्पन्न करने में समर्थ होना चाहिए और विवाह संबंध निर्धारित करने से पहले परीक्षा द्वारा यह जान लेना चाहिए कि वह बंध्या नहीं है। मनु ने लिखा है कि ऐसी स्त्री से विवाह न किया जाए जो कपिल अर्थात भूरे रंग की हो, जिसका कोई अंग अथवा उंगली अधिक हो, जो रोगी हो, जिसके शरीर पर बहुत अधिक बाल हो या बाल बिल्कुल न हो, जो बहुत बाचाल हो, जिसकी आंखें भूरी हो, जिसका नाम वृक्ष नदी या पर्वत पर रखा गया हो, जिसका नाम पक्षी या सांप पर हो और जिसका नाम भयंकर हो। विष्णु पुराण में ऐसी स्त्री को विवाह संबंध के लिए अवांछनीय माना गया है, जिसका रंग बहुत काला या भूरा हो, जिसका कोई अंग कम या अधिक हो, जो चीर रोगिणी हो, जिसके शरीर पर बहुत बाल हो या बाल बिल्कुल ना हो, जो दुष्टा हो, जिसकी वाणी कटु हो, जिसके होठों पर बाल हो, जिसका कद बहुत छोटा हो, जिसके दांत विरल हो और जो बातचीत में सदा व्यंग करती रहती हो। विवाह संबंध स्थिर करते समय स्त्री के वित्त, गुण, रूप, प्रज्ञा तथा बंधु बांधवों को दृष्टि में रखा जाता था और इन गुणों से विरहित स्त्री को विवाह के लिए वांछनीय नहीं समझा जाता था। विवाह सगोत्र व्यक्तियों में निषिद्ध था, गोत्र कुल या परिवार को कहते हैं। ऐसे वर वधु का ही विवाह विहित था जो एक गोत्र के न हो, अर्थात जिनका जन्म एक ही कुल में न हुआ हो। इसीलिए न केवल भाई बहनों में ही अपितु चचेरे, फुफेरे व ममेरे भाई बहनों में भी विवाह का निषेध था। पाणिनि के अनुसार पौत्र से प्रारंभ कर जो संतान परंपरा होती है उसे गोत्र कहते हैं। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। इस प्रकार एक गोत्र में उत्पन्न सब व्यक्ति परस्पर भाई बहन होते हैं, इसीलिए सगोत्र विवाह को निषिद्ध किया गया था। गोत्र के साथ ही परवर को भी विवाह संबंध तय करते हुए ध्यान में रखा जाता था। पूर्व पुरुषों में जिसने मंत्र दृष्टा होकर वैदिक मंत्रों का निर्माण या दर्शन किया हो उसे प्रवर कहते हैं थे। अतः जिन व्यक्तियों का प्रवर एक हो वे भी एक ही वंश या कुल के माने जाते थे और उनमें भी विवाह निषिद्ध था। शास्त्रकारों ने सगोत्र और सप्रवर विवाहों को वांछनीय नहीं माना है। गौतम धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र और बौधायन धर्म सूत्र आदि सभी धर्म शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। बौधायन ने तो यहाँ तक कहा है कि सगोत्र कन्या से माता के समान व्यवहार किया जाए। मनु के अनुसार जो पुरुष बुआ अर्थात फूफी, मौसी व मामा की कन्या से विवाह करता है उसकी शुद्धि चंद्रायन व्रत द्वारा ही संभव है। धर्मशास्त्रों की इस व्यवस्था का अतिक्रमण करने के उदाहरण भी प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं। सुभद्रा अर्जुन की ममेरी बहन थी, पर यह संबंध उनके विवाह में बाधक नहीं हुआ था। मगध के राजा अजातशत्रु का विवाह अपने मामा कोसल के राजा की पुत्री बजीरा के साथ हुआ था। ऐसे ही अन्य भी अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य से दिए जा सकते हैं। वर्तमान समय में भी दक्षिण भारत के हिंदुओं में ममेरी बहन के साथ विवाह संबंध अनुचित नहीं माना जाता। प्राचीन समय में भी दक्षिणात्यों में यह प्रथा प्रचलित थी और इसका संकेत बौधायन धर्म सूत्र में विद्यमान है। वहां लिखा है कि दक्षिण के लोगों में ममेरी और फुफेरी बहनों के साथ विवाह संबंध प्रचलित था। संभवतः उत्तरी भारत के राजकुलों तथा कतिपय अन्य संभ्रांत वर्ग में भी ऐसे विवाहों का चलन था। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उनका संबंध प्रायः ऐसे कुलों के ही साथ है, क्योंकि विवाह संबंध के लिए कुल को बहुत महत्व दिया जाता था। अतः स्वाभाविक रूप से विवाह प्रायः अपने ही वर्ण में हुआ करता था, पर इस प्रथा का प्रचलन उस समय में हुआ जबकि वर्ण व्यवस्था और जाति भेद का भारत में भली भांति विकास हो चुका था। वैदिक और उत्तर वैदिक युगों में असवर्ण विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण ऋषि च्यवन के क्षत्रिय कुमारी सुकन्या के साथ विवाह किया था। ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय कुमारी सुकन्या के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार श्यावास्व नामक ब्राह्मण कुमार का एक क्षत्रिय कन्या से विवाह हुआ था। अनुलोम विवाह बाद के काल के धर्मशास्त्रों में भी विहित है, जिनके अनुसार उच्च वर्ण का कुमार अपने से निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। मनु ने तो यहाँ तक लिखा है कि कन्या रत्न को दुष्कुल हीन कुल से भी प्राप्त किया जा सकता है, पर धर्मशास्त्रों को प्रायः यही मत अभिप्रेत था कि विवाह अपने ही कुल या वर्ण में हो। असवर्ण विवाह को वे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। सूत्र ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह उल्लेखित हैं: ब्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। वर के विद्या, सदाचार आदि गुणों को भली भांति जांच कर जब कन्या का पिता अलंकृत कन्या के साथ उसका विवाह करे तो ऐसा विवाह ब्राह्म विवाह कहता था। जब वर और वधु परस्पर मिलकर धर्मचर्या का पालन करते हुए विवाह संबंध को स्वीकार करें तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते थे। कन्या पक्ष द्वारा गांवों की एक जोड़ी वर को प्रदान कर जो विवाह किया जाता था उसकी संज्ञा आर्ष थी। यज्ञ वेदी के सम्मुख ऋत्विक की स्वीकृति कन्या दान कर जो विवाह संपन्न होता था उसे दैव विवाह कहते थे। कन्या और पुरुष परस्पर प्रेम के कारण स्वयं जो विवाह कर लेते थे वह गंधर्व विवाह कहता था। शुल्क अर्थात दहेज देकर जो विवाह किया जाता था उसे आसुर कहते थे। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उससे जो विवाह कर लिया जाता था उसे राक्षस विवाह कहते थे। सोई हुई या बेसुध स्त्री को ले जाकर उससे जो विवाह किया जाता था उसे पैशाच विवाह कहते थे। इनमें से पहले प्रकार 4 प्रकार के विवाह धर्म अर्थात धर्मानुकूल माने जाते थे। यद्यपि गांधर्व आदि पिछले 4 प्रकार के विवाहों का चलन भी उत्तर वैदिक युग में हो चुका था और कतिपय प्रदेशों व जातियों में ऐसे विवाह भी हुआ करते थे, पर वैदिक युग में इन विवाहों की सत्ता के संकेत नहीं मिलते। सूत्र ग्रंथों और स्मृतियों के काल में भी पिछले 4 प्रकार के विवाहों को उत्तम नहीं समझा जाता था। बौधायन धर्म सूत्र में लिखा है कि जो पुरुष लोभ में आकर और द्रव्य लेकर अपनी कन्या का विवाह करता है वह घोर पाप का भागी बनता है और आने वाली 7 पीढ़ी तक के लिए अपने वंश को कलंकित कर देता है। जो कन्या द्रव्य लेकर विवाहार्थ लाई जाती है वह देव यज्ञ और पितृयज्ञ में पति का साथ नहीं दे सकती। पहले 4 प्रकार के जो धर्म में विवाह होते थे उनका उच्छेद नहीं हो सकता। यदि पति पत्नी का या पत्नी पति का त्याग करे तो इस कार्य को अत्यंत बुरा माना जाता था और इस कुकर्म के लिए कठोर प्रायश्चित की व्यवस्था थी। आपस्तम धर्म सूत्र में लिखा है कि जिस पति ने अन्याय से अपनी पत्नी को त्याग दिया हो वह गधे का चमड़ा ओढ़कर प्रतिदिन 7 घरों में यह कहते हुए भिक्षा मांगे कि उस पुरुष को भिक्षा दो जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। इस प्रकार भिक्षा द्वारा वह 6 महीने तक अपनी निर्वाह करे। पत्नी के पति का त्याग कर देने पर उसे 6 मास तक कृच्छ्रु व्रत करना होता था। वैदिक युग में बहुपत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित थी या नहीं इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। ऋग्वेद के एक मंत्र में 2 पत्नियां रखने वाले पुरुष की उपमा ऐसे घोड़े से की गई है जो रथ की दोनों धुरुओं के बीच में दबा हुआ चलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के समय में बहुविवाह की प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों का उल्लेख है, 2 पत्नियों का उल्लेख है जिनके नाम मैत्रीय और कात्यायनी थे। ऐसे ही अन्य भी अनेक उदाहरण उत्तर वैदिक युग के साहित्य से दिए जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की अनुमति भी वैदिक युग में दी जाती थी। इस विषय के एक मंत्र का उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। यद्यपि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए पुनर्विवाह कर सकना संभव था, पर कतिपय दशाओं में संतान की प्राप्ति के लिए नियोग को भी समुचित तथा धर्मानुकूल माना जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार पुत्रहीन विधवा अपने देवर से संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। उत्तर वैदिक युग में नियोग द्वारा संतान की उत्पत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। क्रू देश के राजा शांतनु के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नियों ने वेद व्यास के साथ नियोग कर संतान को जन्म दिया था। महाभारत की यह कथा सर्वविदित है। बहिन और भाई का विवाह वैदिक युग में सर्वथा निषिद्ध था। ऋग्वेद में ऋग्वेद के यमी सूक्त में यम भाई द्वारा अपनी बहिन यमी को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तू मुझसे भिन्न किसी शक्तिशाली समर्थ पुरुष की पति के रूप में प्राप्ति की इच्छा कर। तीसरा, रहन सहन और खान पान वस्त्र। वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक युग के लोग प्रायः तीन वस्त्र धारण किया करते थे, वास, अधिवास और निबी। संभवतः वास को कटी के नीचे पहना जाता था और उसे परिधान भी कहते थे। अधिवास कटी से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता था। संभवतः यह लंबे कुर्ते या चोगे के ढंग का वस्त्र था। इनके अतिरिक्त एक अन्य वस्त्र का भी प्रयोग किया जाता था जिसे निबी कहते थे। इसे वस्त्र के नीचे पहनते थे। शतपथ ब्राह्मण में जिस यज्ञीय परिधान का वर्णन है उसमें तारप्य, पांडव, अधिवास और उसनीस सम्मिलित हैं। तारप्य एक रेशमी वस्त्र होता था जिसे अधोवास के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। पांडव्य एक ऊनी कपड़े को कहते थे। अधिवास ऊपर पहने जाने वाले चोगे का नाम था और उसनीस को सिर पर बांधा जाता था। शतपथ में जिस पोशाक का यज्ञीय परिधान के रूप में वर्णन है संभवतः वही वैदिक युग के आर्यों द्वारा सामान्य जीवन में भी प्रयुक्त की जाती थी। पुरुषों और स्त्रियों को पहनने के कपड़े में क्या अंतर था इस पर कोई प्रकाश वैदिक साहित्य से नहीं पड़ता, पर शतपथ ब्राह्मण के एक संदर्भ में यह अवश्य ज्ञात होता है कि स्त्रियां यागिक कर्मकांड के अवसर पर कौस वस्त्र धारण किया करती थी। कौस का अभिप्राय रेशमी अर्थात कौशीय भी हो सकता है और कुसा द्वारा निर्मित भी। अथर्ववेद में उपवास नामक एक वस्त्र का उल्लेख है जिससे ओढ़ने की चादर अभिप्रेत है। पगड़ी अर्थात उसनीस केवल पुरुष ही नहीं पहनते थे अपितु स्त्रियां भी पहना करती थी। यजुर्वेद में इंद्रियाया उसनीसह अर्थात इंद्राणी के लिए उसनीस का उल्लेख मिलता है जिससे स्त्रियों द्वारा भी पगड़ी पहनना जाना सूचित होता है। शतपथ ब्राह्मण में इंद्र की प्रिय पत्नी इंद्राणी के उसनीस के साथ विश्वतम रूप विशेषण जो पगड़ी बांधती थी वह विश्वतम रूप होती थी। विश्वतम रूप विशेषण का प्रयोग किया जाता गया है जिससे यह संकेत मिलता है कि इंद्राणी सदृश संपन्न महिलाएं जो पगड़ी बांधती थी वह विश्वतम रूप होती थी। या तो वे अनेक रंगों की होती थी और या उन पर विविध प्रकार की चित्रकारी की होती थी। वैदिक युग के लोग पैरों में जूते भी धारण किया करते थे। संस्कृत में जूते को उपान कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में यह शब्द विद्यमान है और वहाँ बाराहे बराह के चमड़े से बने हुए उपानहों का उल्लेख है। वेदों में उपानह शब्द नहीं आया है पर अथर्ववेद में पतसंगिनी का उल्लेख है जिससे किसी प्रकार के पादत्राण या जूते का अभिप्राय ही प्रतीत होता है। वैदिक युग में विभिन्न प्रकार के वस्त्र रुई ऊन रेशम और विभिन्न प्रकार की घास सन आदि से बनाए जाते थे। आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए इस विषय का विशद रूप से प्रतिपादन किया जाएगा। उस काल में वासो वाय कपड़ा बुनने वाले का एक शिल्प अच्छी उन्नत दशा में था और वे सूत, ऊन, रेशम आदि से अनेक विधि कपड़ों का निर्माण किया करते थे। कपड़ों पर अनेक प्रकार से कासीदागिरी और कढ़ाई भी की जाती थी और इसके लिए सुवर्ण का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में हिरण्यायन उत्कान का उल्लेख है, जिसका अर्थ सुवर्ण से काढ़े हुए परिधान ही किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि वैदिक युग के आर्य अनेक प्रकार से अलंकृत वस्त्रों को धारण किया करते थे। शरीर को ढकने के लिए सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों के अतिरिक्त अजीन या चर्म द्वारा निर्मित वस्त्रों का प्रयोग करने की प्रथा भी वैदिक युग में विद्यमान थी। अजीन का अर्थ मृग चर्म है और शतपथ ब्राह्मण में अजीनवासी अजीन के वस्त्र पहने हुए ब्राह्मणों का उल्लेख है। ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि कान्वकृष को प्रसकण्व द्वारा दिए गए दान की स्तुति की गई है। प्रसकण्व ने 100 श्वेत बैलों, 100 भैंसों, 100 कुत्तों और 400 लाल घोड़ियों के साथ 100 मलातानी चरमानी कमाई हुई खालों को भी दान में दिया था। कमाई हुई ये खाले किसी प्रकार के परिधान के लिए ही प्रयुक्त की जाती थी, इस कल्पना को असंगत नहीं कहा जा सकता। आभूषण वैदिक युग में आभूषण पहनने का भी रिवाज था। ऋग्वेद में निष्क, कुररी और कर्ण शोभन आभूषणों का उल्लेख है। निष्क एक प्रकार का हार होता था जिसे गले में पहना जाता था। वेदों में निष्क्रीव का उल्लेख है और ऐत्रेय ब्राह्मण में निष्क कंठ का। निष्क नाम का एक सिक्का भी वैदिक युग में प्रचलित था, जिसे वस्तुओं के विनिमय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। निष्क ग्रीव और निष्कंठ जैसे हार संभवतः निष्क संज्ञक सिक्कों द्वारा ही बनाए जाते थे। कुरीर को सिर या माथे पर धारण किया जाता था। अथर्ववेद में कुरीर का उल्लेख सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषण के रूप में किया गया है। यजुर्वेद में देवी सिनीवाली के लिए सुक प्रदा और अश्वोपसा विशेषणों के साथ सुकरीरा विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। सुक पर्दा का अर्थ सुंदर बेनी वाली है। सिन्नी वाली की बेनी जहाँ अत्यंत सुंदर थी, वहाँ उसने बेनी के साथ सुंदर करीर को भी धारण किया हुआ था। कर्ण शोभन को कानों में पहना जाता था। ऋग्वेद में कर्ण शोभन का एक आभूषण के रूप में उल्लेख है। अथर्ववेद में एक अन्य आभूषण का नाम आया है, जिसे कुंभ कहते थे। कुरीर के समान इसे भी सिर पर धारण किया जाता था। ऋग्वेद में रुक्म और मणि का भी आभूषणों के रूप में उल्लेख विद्यमान है। रुक्म एक ऐसा आभूषण था जो छाती पर लटका रहता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में मरुतों के लिए रुक्म वक्षसह विशेषण आया है, जिससे यह सूचित होता है कि यह आभूषण वक्षस्थल की शोभा बढ़ाया करता था। मणि का प्रयोग भी आभूषण के रूप में किया जाता था। ऋग्वेद में मणिग्रीव शब्द का शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिससे इसका गर्दन में लटका कर पहने जाना सूचित होता है। नियोचनी संज्ञक एक अन्य आभूषण का भी ऋग्वेद में उल्लेख है, जिसे वधु विवाह के अवसर पर पहना करती थी। इसमें संदेह नहीं कि वैदिक युग के स्त्री पुरुष अनेक विध आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया करते थे। केश विन्यास वैदिक युग में केश विन्यास पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक ऐसी युवती का वर्णन है, जिसने कि अपनी बालों की चार बेनियों कपर्द बनाई हुई थी। यजुर्वेद में सिनी वाली के लिए सुक प्रदा विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिससे इस देवी द्वारा अपनी बेनी को अत्यंत सुंदर रूप से बनाए जाने का संकेत मिलता है। इस युग के पुरुष जहां दाढ़ी मूछ रखा करते थे, वहां उन्हें मुंडन डालने की प्रथा भी विद्यमान थी। ऋग्वेद में छूर का उल्लेख है, जिससे उस्तरा भी अभिप्रेत हो सकता है। अथर्ववेद में छूर शब्द अनेक बार आया है और वहां उसका अर्थ हजामत बनाने वाले उस्तुरे से ही लिया गया है। सैया आदि घरेलू सामान। वैदिक युग के घरों पर हम आर्थिक जीवन का प्रतिपादन करते हुए विशद रूप से प्रकाश डालेंगे, पर जिन पर्यंक आसंदी आदि से घरों को सुसज्जित किया जाता था, वैदिक युग के रहन सहन का वर्णन करते हुए भी उनका उल्लेख करना उपयोगी है। अथर्ववेद में आसंदी को अनेक बार उल्लेख हुआ है और यजुर्वेद में भी। इसके चार पाए होते थे और इसे बैठने के काम में लाया जाता था। इस पर आस्तरण अर्थात गद्दा बिछा रहता था और उपवरहन अर्थात तकिया लगा रहता था। पीठ को टिकाने के लिए इसके पीछे उपस्रय पीठ भी बना होता था। पर्यंक का उल्लेख कौशितकी उपनिषद में भी मिलता है और इसका उपयोग लेटने के लिए किया जाता था। पर्यंक के समान एक अनसैया प्रोष्ठ होती थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आता है। एक मंत्र में तीन प्रकार स्त्रियां की कही गई है, प्रोष्ठेस्या अर्थात प्रोष्ठ पर सोने वाली, बहेस्या अर्थात बहे पर सोने वाली और तल्प सिबरी तल्प पर सोने वाली। इससे स्पष्ट है कि प्रोष्ठ वह और तल्प तीनों विभिन्न प्रकार की सैयाएं थी जिन्हें सोने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, पर इनमें भेद क्या था यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः वह पालकी को कहते थे। अथर्ववेद के एक मंत्र में वह पर चढ़ी हुई वधू का उल्लेख है, जिससे उसका पालकी होना सूचित होता है। विवाह के समय जो पलंग वर वधू के प्रयोग के लिए प्रदान किया जाता था और जिसका उपयोग वर वधू ही किया करते थे, उसे तल्प कहते थे। अथर्ववेद के एक मंत्र में वधू से कहा गया है कि वह प्रसन्नचित होकर तल्प पर आरोहण करे और पति के लिए प्रजा अर्थात संतान उत्पन्न करे। शतपथ ब्राह्मण में संतान को तल्पेय भी कहा गया है, क्योंकि उसका जन्म तल्प पर ही होता था। प्रोष्ठ वह तल्प पर्यंक और आसंदी के अतिरिक्त वैदिक युग के घरों में अनेक विधि चटाइयां आसन आदि भी हुआ करते थे, जो उठने बैठने के काम में आते थे। वस्त्र आदि विविध प्रकार के सामान रखने के लिए कोष पेटियां प्रयुक्त किए जाते थे और अन्न आदि भोजन सामग्री के लिए कलश द्रोण और दृत्तिका। कोष जहां पेटी को कहते थे, वहां एक ऐसे बर्तन को भी जो बाल्टी के समान होता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में कोष से रस्सी बांधकर अवत अर्थात कुएं से जल खींचने का उल्लेख है। कलश घड़े को कहते थे, जो या तो मिट्टी का बना होता था या धातु का। द्रोण लकड़ी का बना पात्र होता था जिसमें सोम रस एकत्र किया जाता था। धृति का निर्माण चमड़े से किया जाता था। सूप छलनी उल्खल चषक अर्थात प्याले स्थली अर्थात थाली आदि अन्य भी विविध प्रकार के उपकरणों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, जिनका उपयोग उस युग के लोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया करते थे। भोजन। वैदिक युग में आर्यों के मुख्य भोज पदार्थ अन्न कंद मूल फल दूध और घृत थे। वैदिक साहित्य में प्रधानतया व्रीहि यब तिल मांस अर्थात उड़द श्यामक अर्थात सावक सारिसाका अर्थात सरसों और गन्ने का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कृषि द्वारा उत्पन्न किया जाता था। ये सब भोजन के काम आते थे। ब्रीही धान अनेक प्रकार के होते थे, यथा आसु शीघ्र पैदा होने वाला कृष्ण और महाब्रीही बड़े दानों वाला। तंदूल का उल्लेख भी वैदिक साहित्य में है, जो चावल का ही बोध कराता है। भोजन के लिए उबाले गए तंदूलों चावलों को ओदन कहते थे, जिसके अनेक प्रकार थे, यथा क्षीरोदन अर्थात खीर, दध्योदन अर्थात दही चावल, मदगोदन अर्थात मूंग चावल की खिचड़ी, तिलोदन उदौदन जल में पकाए हुए चावल, मांसोदन मांस का पुलाव और घृतोदन आदि। विविध प्रकार के इन चावलों का उल्लेख बृहदारण्यक, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण आदि उत्तर वैदिक युग के साहित्य में आया है। पर क्षीरोदन क्षीरपाकमोदनम दूध में पकाए हुए चावल के रूप में ऋग्वेद में भी विद्यमान है। यब जौ को कहते थे, ऋग्वेद में यब का अनेक मंत्रों में उल्लेख हुआ है, पर गेहूं का कहीं वर्णन नहीं है। पर यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण आदि में गोधूम का परिगणन ब्रीही यब मांस तिल मूंग खल्ब प्रियंगु मसूर श्यामक निवार आदि कृषि जन पदार्थों के साथ किया गया है। गोधूम से गेहूं ही अभिप्रेत है। इससे यह संकेत मिलता है कि वैदिक युग में अन्न अन्नों के समान गेहूं का भी भोजन के लिए उपयोग होता था। गेहूं द्वारा कौन से खाद्य पदार्थ वैदिक युग में तैयार किए जाते थे, इस पर भी वेद मंत्रों द्वारा कुछ प्रकाश पड़ता है। ऐसा एक पदार्थ पक्ती था, जिसका उल्लेख प्रायः पुरोडास के साथ किया गया है। पक्ती और पुरोडास दोनों से दो प्रकार की रोटियां ही अभिप्रेत थी, जिन्हें बनाने के लिए गोधूम और तंडुल को प्रयुक्त किया जाता था। अपूप पुआ और पूड़ी का उल्लेख भी वैदिक साहित्य में आया है। ऋग्वेद में इसे घृतवंत कहा गया है। इच्छु अर्थात गन्ने का उल्लेख अथर्व वेद में है, जिससे सूचित होता है कि वैदिक युग में शर्करा आदि का भी भोजन के लिए प्रयोग किया जाता था। वैदिक युग के आर्यों के भोजन में दूध दही और घृत का बहुत अधिक स्थान था। दूध से न केवल क्षीरोदन बनाया जाता था, अपितु सोमरस में मिलाकर भी उसका पान किया जाता था। दही को मथकर मन्नत अर्थात मट्ठा भी बनाया जाता था। मन्नत न केवल मट्ठे को कहते थे, अपितु एक ऐसे पेय की भी संज्ञा थी, जिसे सत्तू और दूध को मिलाकर तैयार किया जाता था। मांस भक्षण का प्रश्न, वैदिक युग में मांस भक्षण का प्रचार था या नहीं, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। जिन प्रमाणों द्वारा वैदिक युग में मांस भक्षण की प्रथा का प्रतिपादन किया जाता है, उनमें से कतिपय का यहाँ उल्लेख करना उपयोगी होगा, ताकि यह भी प्रदर्शित किया जा सके कि दूसरे पक्ष के विद्वान इन मंत्रों का क्या अर्थ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में एक मंत्र है, जिसका अर्थ सायन द्वारा यह किया गया है कि प्रजापति के वीर अंगिरसों ने मेदा अर्थात चर्बी और मांस से युक्त मेष अर्थात भेड़ को पकाकर इंद्र के लिए पशु याग का अनुष्ठान किया। इसी सूक्त के एक मंत्र में तुब्र अस्थूल अर्थात अस्थूल वृषभ अर्थात बैल के पकाए जाने की बात कही गई है। ऋग्वेद के एक मंत्र में अग्नि को उच्छान उछा या बैल, जिसका अन्न या खाद हो, कहा गया है। उत्तर वैदिक युग के साहित्य में तो मांस भक्षण के संकेत और भी अधिक स्पष्ट हैं। शतपथ ब्राह्मण में राजा ब्राह्मण और अतिथि के लिए महोच अर्थात बड़ा बैल और महाज अर्थात बड़ा बकरा पकाने का विधान किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के एक संदर्भ में यह कहा गया है कि जो कोई मनुष्य चाहे कि उसका पुत्र सर्वज्ञ विजय करने वाला पंडित सभा समिति में आने आने वाला और वहां जाकर सुनियंत्रित भाषण देने वाला, सब वेदों का वक्ता और पूरी आयु भोगने वाला हो, तो उसे और उसकी पत्नी को बैल के मांस को चावलों के साथ पकाकर और उसमें ताजा घी डालकर खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में जो अजामेघ, अश्वमेघ और गोमेद सदृश यज्ञों का विधान है। उनमें इन पशुओं की बलि देकर यज्ञ शेष के रूप में उनके मांस का भक्षण भी किया जाता था। पर जिन विद्वानों का यह मत है कि वैदिक आर्य मांस भक्षक नहीं थे, वे इन मंत्रों तथा इसी प्रकार के अन्य मंत्रों का अर्थ अन्य प्रकार से करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो मंत्र ऊपर लिखे गए हैं वे पहेलियों के रूप में हैं। वहाँ मेष का अर्थ भेड़ न होकर मेष राशि अभिप्रेत है। मेष, वृष, मिथुन आदि 12 राशियां हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी जिनके सम्मुख जाती है। मंत्र में पिवानम मेषम को पकाने का अभिप्राय मेष राशि के तारा पुंज को इस रूप में चमकाना है जिससे कि वह आकाश में चमकता हुआ दिखाई दे सके। लूडविक सदृश कतिपय आधुनिक विद्वानों ने भी इस मंत्र में आए हुए पिवान मेष का अर्थ जल से फूला हुआ मेघ किया है। मंत्र में आए हुए अपचंत शब्द का अर्थ केवल पकाया ही नहीं होता। सायन ने स्वयं एक मंत्र की व्याख्या करते हुए पच्यति अर्थात पकाया है का अर्थ वृष्टभिमुखम करोति वर्षा करता है किया है। इसी प्रकार वृषभ का अर्थ भी केवल बैल नहीं है। वृषभ के अर्थ चंद्रमा और सोमलता भी होते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 1 सूक्त में वृषभ शब्द 2 बार आया है। वहाँ वह पर्जन्य या मेघ का बोधक है। इसे मैकडॉनल्ड और किथ ने भी वैदिक इंडेक्स में स्वीकार किया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में आए हुए वृषभ शब्द का अनेक स्थलों पर सायन ने सोम अर्थ किया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में आए हुए वृषभ शब्द का अनेक स्थलों पर सायन ने सोम अर्थ किया है। यदि वृषभ का अर्थ सोम मान लिया जाए तो ऊपर लिखे मंत्र में अमाते तुभ्रम वृषभम पचानी का अर्थ यह होगा कि इंद्र द्वारा सोम को परिपक्व किया जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 1 मंत्र में आए हुए उच्छान शब्द का अर्थ बैर जिसका खाद्य हो करना संगत नहीं है। ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में जो उच्च या महोच्च शब्द आए हैं उनसे बैल अभिप्रेत न होकर वह औषधि अभिप्रेत है। अमरकोश में जिसे श्रृंगी या काकड़ा सिंगी का पर्यायवाची प्रतिपादित किया गया है इसी प्रकार महाज में जो अज शब्द है उसका अर्थ भीड़ न होकर अन्न है। महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अज संज्ञा बीजों की है। यज्ञों में बीजों द्वारा ही आहुति देनी चाहिए, छाग अर्थात भेड़ बकरी को मार कर नहीं। शतपथ ब्राह्मण में जहां राजा ब्राह्मण और अतिथि के लिए महोच तथा महाज पकाकर देने का विधान है वहां उच्च औषधि ककड़ा सिंगी तथा विशेष प्रकार के बीजों को पकाकर देना ही अभिप्रेत है। बृहदारण्यक उपनिषद में जहां उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए औक्षण मांस को चावल और घी के साथ पकाकर खाने की बात कही गई है वहां भी उन औषधियों को चावल तथा घी के साथ पकाकर खाने का विधान है जिन्हें कि उच्च या वृषभ कहा जाता है। और आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत के अनुसार जो पित्त तथा खून की गर्मी का विनाश करने वाली होने के साथ साथ जीवन और शक्ति देने वाली भी है। निसंदेह ऐसी औषधि गर्भवती स्त्री के लिए बहुत लाभकर है। शतपथ ब्राह्मण में उसी के सेवन का विधान किया गया है। यह सही है कि वैदिक साहित्य में अश्वमेघ, गोमेघ और अजामेघ मेध सदृश यज्ञों का विधान है, पर इन यज्ञों में अश्व, गौ और अजा की बलि दी जाती थी। यह बात सब विद्वानों को मान्य नहीं है। इन यज्ञों का क्या अभिप्राय है इस विषय पर वैदिक युग के धार्मिक जीवन का निरूपण करते हुए पहले प्रकाश डाला जा चुका है। यह विषय अत्यंत विवादग्रस्त है। इस ग्रंथ में इसका अधिक विस्तार से विवेचन कर सकना संभव नहीं है। गौ की अवधेयता पर इस प्रसंग में यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर गौ को अधन्या जिसका वध न किया जा सके कहा गया है और अधन्या को गौ के पर्यायवाची रूप से प्रयुक्त किया गया है। उदाहरणार्थ एक मंत्र में गौ को अघन्ने संबोधन करके उसे शुद्ध जल पीने तथा तीन घास खाने के लिए कहा गया है। एक मंत्र में गौ अघन्या है यह कहकर उसके दूध में निरंतर वृद्धि की प्रार्थना की गई है। ये दोनों मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद में अघन्या शब्द गौ के पर्यायवाची रूप से प्रयुक्त किया गया है। परिवार में पति पत्नी और पिता पुत्र आदि में किस प्रकार सामंजस्य अर्थात मन का एक सदृश होना और सहृदयी अर्थात हृदय का एक सदृश होना हो और सब कैसे एक दूसरे से प्रेम करे, इसके लिए यह कहा गया है कि जैसे अघन्या अर्थात गौ अपने वत्स अर्थात बछड़े से करती है। गौ के लिए वेदों में अघन्या शब्द प्रयुक्त होने से यह सूचित होता है कि वैदिक युग में गौ को अवध्य माना जाता था। इस दशा में उसका मांस खाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। छठा, स्त्री शिक्षा और समाज में स्त्रियों की स्थिति। वैदिक युग में स्त्रियां भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। यागिक कर्मकांड में पुरुषों को सहयोग प्रदान करती थी और समाज में उनका महत्वपूर्ण एवं समुचित स्थान था। बालकों के समान बालिकाओं का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था और वे भी ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करती हुई शिक्षा प्राप्त करती थी। अथर्ववेद के एक मंत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। अश्वलायन स्रोत सूत्र में लिखा है कि बालक और बालिका दोनों के लिए ब्रह्मचर्य समान है, समान ब्रह्मचर्यम। गोविल गृह सूत्र में विवाह के समय जिस कन्या को वर के लिए प्रदान किया जाता है उसके लिए यज्ञोपवीतनीम अर्थात जिसने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ हो विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार होता था और वे भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती हुई विद्या का अध्ययन किया करती थी। स्त्रियों के शिक्षित होने का ही यह परिणाम था कि यज्ञ सदृश धार्मिक कृतियों में पत्नी अपने पति का हाथ बटाती थी और उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था। कितनी ही स्त्रियां वेद मंत्रों की ऋषि अर्थात रचयिता या दृष्टा भी हैं, जिनमें लोमसा, लोपा मुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, विश्वस्वान पुत्री यमी, पुलोम पुत्री सची, काम गोत्राई श्रद्धा, ब्रह्मवादिनी जुहू, अम्ब्रीन पुत्री वाक, सूर्या, इंद्रोणो, कच्छीवान पुत्री घोषा, अर्चनाना, गौरवीती, अपाला, असंग भार्यो तथा अंगिरा कन्या सास्वती आदि उल्लेखनीय हैं। वैदिक ऋषियों में स्त्रियों का भी होना महत्व की बात है। उनकी कृतियों की वैदिक संहिताओं में स्थान दिया गया था या उन्हें भी उन ऋषियों में परिगणित किया गया था जिन्होंने की वेद मंत्रों के अभिप्राय को स्पष्ट किया था। स्त्री ऋषियों के कतिपय मनोभावों का यहाँ निदर्शन करना वैदिक युग की स्त्रियों की स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होगा। ऋग्वेद के एक सूक्त में पौलोमी सची द्वारा अपने मनोभाव इस प्रकार प्रकट किए गए हैं। मैं ज्ञानवती हूँ, मैं मूर्धन्य हूँ, मैं तेजस्वी वक्तृत्व करने वाली हूँ, मैं शत्रु का विनाश करने वाली हूँ। पति मेरे अनुकूल रहकर व्यवहार करे, मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। मेरी पुत्री तेजस्विनी है, मैं सर्वत्र विजयी हूँ। मेरी प्रशंसा पति के विषय में है या मैं सदा अपने पति की प्रशंसा करती हूँ। वैदिक युग की स्त्रियाँ सुशिक्षित, ज्ञान संपन्न, तेजस्विनी तथा पति से अनुकूल व्यवहार प्राप्त करने की आशा करने वाली होती थी, यह इस मंत्रों से स्पष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख विद्यमान है। शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह जनक की सभा का वर्णन है, जिसमें कि कुरु पंचाल के ब्राह्मण एकत्र हुए थे। वहां वाचक नवी अर्थात वाक कुशल गार्गी भी गई थी और उसने महर्षि यागवल्लक से शास्त्रार्थ भी किया था। अनेक प्रश्न पूछने के पश्चात गार्गी ने यागवल्लक से प्रश्न किया था, ब्रह्मलोक किसमें उत्प्रोत है? संभवतः यागवल्लक्य इसका उत्तर नहीं दे सके थे और वे यह कहकर चुप हो गए थे कि गार्गी अब अधिक न पूछो। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुमारी गंधर्व गृहिता का उल्लेख है, जिसे वहां परम विदुषी तथा वक्तृता में प्रवीण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मैत्रेय यागवल्लक्य की पत्नी थी, जिसकी रुचि सांसारिक भोग सुख भोग के प्रति न होकर अध्यात्म चिंतन तथा ब्रह्म विद्या में थी। जब यागवल्लक्य ने परिव्राजक होने का निश्चय किया तो उसने चाहा कि अपनी सब संपत्ति को अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेय और कात्यायनी में बांट दे। यह जानकर मैत्रेय ने कहा, यदि धन धान से परिपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी भी मुझे प्राप्त हो जाए तो उससे मैं अमृतत्व कैसे प्राप्त कर सकूंगी? जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? जो ज्ञान आपको प्राप्त है वही मुझे प्रदान कीजिए। यह सुनकर यागवल्लक ने जो ज्ञान मैत्रेय को दिया वह विशद रूप से शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। काशकृत्सनी नामक एक महिला ने मीमांसा दर्शन पर एक ग्रंथ की रचना की थी और इस दर्शन पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महाभारत में ब्राह्मणी काशकृत्सनी द्वारा प्रोक्त मीमांसा का उल्लेख आया है। रामायण के अनुसार सीता प्रतिदिन वैदिक सूक्तों द्वारा प्रार्थना किया करती थी और राम की माता कौशल्या रेशमी कपड़े पहनकर अग्निहोत्र के अनुष्ठान में तत्पर रहती थी, जिसमें कि वह स्वयं मंत्रों का पाठ किया करती थी। महाभारत में लिखा है कि पांडवों की माता कुंती अथर्ववेद में निष्णात थी। स्त्रियां अध्यापन का कार्य किया करती थी। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उपाध्याय की पत्नी को उपाध्यायिनी कहा जाएगा और जो स्त्री स्वयं अध्यापन का कार्य करे उसे उसके लिए उपाध्याया शब्द प्रयुक्त होगा। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में स्त्रियां भी अध्यापन का कार्य किया करती थी। स्त्री का संपत्ति पर अधिकार। वैदिक युग में स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त था या नहीं, यह वैदिक संहिताओं में स्पष्ट नहीं होता, पर ऋग्वेद के एक मंत्र में यह संकेत अवश्य विद्यमान है कि संतान न होने पर पति के पश्चात पत्नी को ही संपत्ति की स्वामिनी माना जाता था। इस मंत्र में अन्योदर्य अर्थात अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न संतान को दत्तक पुत्र बनाकर उसे संपत्ति प्रदान करना बहुत वांछनीय नहीं माना गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि दत्तक पुत्र की तुलना में स्त्री का संपत्ति पर अधिकार होना वैदिक युग में अभीष्ट था, पर भाई होने की दशा में पुत्री का पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं माना जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार तानव अर्थात औरस पुत्र होने पर उसकी बहन रिक्त पैतृक संपत्ति में कोई भाग प्राप्त नहीं करती, पर यदि माता पिता की संतान केवल कन्याएं ही हो तो वे ही पैतृक संपत्ति की अधिकारिणी मानी जाती थी। विवाह हो जाने पर भी कन्या धन प्राप्त करने के लिए पितृकुल में आया करती थी। यदि कोई कन्या विवाह न करे और पितृकुल में ही रहे तो भाई होने की दशा में भी पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा माना जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे इंद्र मैं आपसे उसी प्रकार धन की याचना करता हूँ जैसे कि माता पिता के साथ रहने वाली और पितृगृह में ही बूढ़ी हो जाने वाली कन्या घर से अपना हिस्सा मांगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे इस दशा में परिवर्तन आने लगा। ब्राह्मण ग्रंथों के समय तक स्त्रियों को पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित रखने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो चुकी थी। इसीलिए तैतृय संहिता में यह कहा गया है कि स्त्रियां अदायादि अर्थात जिन्हें दयाद का अधिकार न हो होती हैं और उन्हें दाय की इच्छा नहीं करनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में भी पत्नी को दाय से वंचित कहा गया है। पत्नी को दाय से वंचित कहा गया है। स्मृतियों और धर्म सूत्रों में संपत्ति पर स्त्रियों के अधिकार के संबंध में अनेक व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें कहीं कहीं विरोध भी विद्यमान है। इसका कारण संभवतः यह था कि भारत के सब प्रदेशों में उत्तराधिकार विषयक नियम एक समान नहीं थे और विभिन्न समयों में उनमें परिवर्तन भी होते रहे थे। यही कारण है कि मन्नु, याज्ञवल्क्य, गौतम और बृहस्पति आदि के विचार इस प्रश्न पर एक सदृश नहीं है कि स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार किस अंश तक प्राप्त हो। मन्नु ने यह व्यवस्था की है कि कन्या के भाई अपने भाग से एक अंश अर्थात चौथाई अंश अपनी बहन को दिया करे और जो ऐसा नहीं करते वे पतित होते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी भाइयों द्वारा बहिन के लिए चतुर्थ अंश दिए जाने की पुष्टि की गई है। महाभारत के अनुसार पुत्र न होने की दशा में पुत्रियों को ही संपूर्ण पैतृक संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए और दत्तक पुत्र की तुलना में औरस कन्या की स्थिति अधिक ऊंची है। इसी प्रकार की कितनी ही अन्य भी व्यवस्थाएं प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं, जिनसे स्त्री के संपत्ति विषयक अधिकार सूचित होते हैं। समाप्त।